नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। गुरु महाराज और संप्रदाय के आचार्यों के असीम कृपा से अभी हम गोद्रुम द्वीप में आए हैं। गोद्रुम द्वीप शास्त्रों के अनुसार नवधा भक्ति में कीर्तनम इस विधि का ये द्वीप प्रतिनिधित्व करता है। नवधा भक्ति में जो नव विधि है उसमें से कीर्तनम इस द्वीप में प्रचलित है। साथ साथ में ये नंदगांव का प्रतीक है। श्री वृंदावन धाम में नंदगांव है जिसमें नंद बाबा का घर है। वृंदावन के अंदर के हिस्से में है। वहाँ से 7 किलोमीटर दूर बरसाना है और नंदगांव से नंद बाबा और यशोदा माई गोकुल आए थे क्योंकि उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। नंद बाबा की उम्र 85 साल के ऊपर हुई थी तो नंद बाबा ने और वृषभानु महाराज ने ये चर्चा किया कि वृषभानु बाबा को भी कोई संतान नहीं थी। दोनों मित्र थे, उन्होंने चर्चा किया कि हम अभी जमुना किनारे जाएंगे गोकुल में, तो जमुना जी के सान्निध्य से जमुना जी के संग से और कृपा से हो सकता है कि हमें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाए। इसलिए नंदगांव से वो चले गए थे गोकुल और वहाँ पर मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ और वहाँ से उनको गोकुल में लाया गया। ये कहानी आप तो जानते हैं। नंदगांव श्री मायापुर नवद्वीप धाम में इस जगह पर प्रकट है। ये पूरा द्वीप जो है गोद्रुम द्वीप, इसमें बहुत सारे स्थान हम दर्शन करेंगे तो ये नंदगांव का प्रतीक है। नंदगांव की विशेषता ये है कि नंदगांव वात्सल्य और साक्ष्य रस का प्रतीक है। माता पिता नंद बाबा यशोदा माई, उनका बहुत सारा यहाँ पर लीलाएँ हैं। और एक विशेषता यह है कि हमारे प्रिय भगवान शंकर जो हैं वो वहाँ पर पर्वत बने हुए हैं। हमारे प्रिय ब्रह्मा जी जो हैं जिनकी हमने कहानी सुनी कि उन्होंने अंतरद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, वो ब्रह्मा जी बरसाने में पर्वत बने हुए हैं। इसलिए बरसाने में 4 चोटियों वाला पर्वत है और शिव जी का जो पर्वत है नंदीश्वर कहते हैं उसको, वो 1 चोटी वाला पर्वत है। अपने सर पर ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा कृष्ण बलराम लीला करें इस इच्छा से शिवजी महाराज वहाँ पर पर्वत बने और गोपियों की और राधा कृष्ण की माधुर्य लीला का लीलाओं को करते हुए उनके चरणों की रज प्राप्त हो जाए, इसलिए ब्रह्मा जी बरसाने में पर्वत बने और विष्णु भी पर्वत बने हुए हैं। तो कहाँ बने हैं पर्वत? श्री गोवर्धन के रूप में विष्णु ब्रज में विराजमान हो गए और गोवर्धन का भाग्य ऐसा है कि सभी प्रकार की लीलाएं शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, सभी प्रकार की लीलाओं का वहां पर दर्शन और सान्निध्य गोवर्धन को प्राप्त हुआ है। कल हमने चैतन्य मठ में चंद्रशेखर भवन में गोवर्धन का दर्शन किया, सब लोगों ने किया, परिक्रमा किया। ऐसे कहते हैं कि नवद्वीप मायापुर धाम बहुत दयालु है, बहुत उदार है, बहुत करुणामय है, बहुत कृपालु है, वो धाम ही कृपालु है। तो वृंदावन धाम में गोवर्धन की परिक्रमा आज के तारीख में करने के लिए 6 से 8 से 10 घंटे लग सकते हैं चल के, लेकिन वही कृपा श्री मायापुर धाम में आपको 3 मिनट में मुमकिन है। और आप एक करते करते वृंदावन धाम में थक जाते हैं और 6 महीने के बाद दूसरी करने का प्लानिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक साथ 11, 108 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3-3 मिनट का ही काम है केवल। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की उच्च लीला जो है और सभी प्रकार का जो उच्च कृपा है वो बड़ी ही सहजता से श्री मायापुर धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपलब्ध किया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? जो अन्य जगह पर बहुत कठिन है प्राप्त करने के लिए, वो सारी कृपा जो है वो श्री नवद्वीप मायापुर धाम में बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। कारण क्या उसका? क्योंकि यहाँ के कलयुग के जीव इतने पतित है, मैंने कहा ना, उनको उत्साह नहीं है, उनको कोई शक्ति नहीं है, उनकी स्मृति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है उनके पास। तो ऐसी अवस्था में अगर बिकट बिकट चीज़ें प्रकट की जाएंगी तो कैसे उनको कृपा प्राप्त होगी? इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने इस अवतार में बड़े उदार हृदय हो जाते हैं और जो मुश्किल चीज़ें हैं बड़ी आसान कर देते हैं। जैसे कि रास लीला में प्रवेश करना है आपको तो गोपी बनना पड़ेगा, और गोपियों का तो चैतन्य महाप्रभु ने कितना स्तुति किया है, जो एकदम सख्त सन्यासी थे, कठिन व्रत करने वाले, स्त्री की आकृति या जूते को भी देखते नहीं थे वो। और वो चैतन्य महाप्रभु जो इतने कठिन सन्यासी थे, वो गोपियों का बहुत गौरव करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं, क्योंकि वो भी स्त्रियां हैं, लेकिन वो कहते हैं कि गोपियां सर्वोच्च कोटि की भक्त हैं और केवल उनको ही रास में प्रवेश है। लेकिन वही कठिन बात जो केवल गोपी बनना भी कठिन है और प्रवेश पाना भी कठिन है, वो कठिन बात श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के द्वारा श्रीवास आंगन में सबको प्रवेश देते हैं। और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सब लोगों को उन्होंने ये दिव्य कृपा, सर्वोच्च कृपा जो है वो हमारे गौरांग महाप्रभु ने सबको प्राप्त करा दी है। पूछना ठाकुर जी का नाम क्या है, भगवान के विग्रहों का नाम क्या है पूछना। कुछ ठाकुर जी का नाम क्या है? श्री राधा माधव गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री राधा माधव श्री गौरांग महाप्रभु की। स्कंद पुराण में तो ये जगह जो है वो ये गोद्रुम द्वीप है, श्री वृंदावन धाम का नंदीश्वर नंदगांव है और यहाँ पर निमाई अपने मित्रों को लेकर गाय चराते थे, जैसे वो नंदगांव में चराते थे। तो यहाँ पर सभी ग्वाल बाल गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर निमाई के साथ में दही, दूध, मिठाई, संदेश, इन सब वस्तुओं को लेकर, फूलों को लेकर, फलों को लेकर आते थे और रोज़ गाय चराते हुए सब ये आनंद लेते थे, ऐसा वर्णन आया है। बार बार कहते थे कि हम हमारे घर से अलग अलग व्यंजन लेके आएंगे, आप ज़रूर आना, हमको दुख होगा अगर आप लेट आएंगे, इस समय पर आना और हमारे घर का जो व्यंजन है मेरी माताओं ने बनाया दिया वो सब स्वीकार कीजिए। तो इस जगह पर जहाँ पर हम बैठे हैं, चलकर आए दूर से इतने, इसका नाम है सुवर्ण विहार। क्या नाम है? निताई गौर प्रेमानंदे। सब लोग उत्साह में है ना, हरे कृष्णा। तो ये जगह जो है सत्ययुग में इसमें एक राजा रहते थे, राजा सुवर्णसेन। और राजा सुवर्णसेन बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, भौतिकतावादी थे। उनको दुनियादारी में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में, राज्य की सीमा बढ़ाने में, धन संपत्ति में, ऐश्वर्य भोग में बहुत रुचि थी और भगवान में बिल्कुल ध्यान नहीं था उनका। लेकिन बड़े अच्छे स्वभाव के राजा थे वो, सत्व सदाचारी राजा थे। तो नारद मुनि को उनको दया आई कि इतने अच्छे राजा हैं लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है, केवल माया में वो लिप्त हैं। तो वो यहाँ पर नारद मुनि आते हैं और उनसे कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, जिस भोग के पीछे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, राज्य की सीमा बढ़ा रहे हो, धन संपत्ति बढ़ा रहे हो, वो सब नश्वर है, सब कुछ आपको यहाँ पर छोड़ के जाना होगा। और जीवन की प्राप्ति इन ऐश्वर्यों का भोग करने के लिए नहीं बनाई गई है, आपको जीवन जो दिया गया है वो भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया है। अगर भगवान की प्राप्ति इसमें नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, इसे नारद मुनि राजा को बता रहे हैं। लेकिन राजा को जो बता रहे हैं वो सब हमको भी लागू है और वो सत्ययुग में लागू है, आज कलयुग में भी लागू है। क्योंकि सत्ययुग हो, त्रेतायुग हो, कलयुग हो या द्वापर युग हो, कोई भी युग हो, इसमें जो भी जीव जन्म लेता है वो सब बद्ध जीव कहलाते हैं। बद्ध जीव का मतलब क्या है? जो जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा इस चक्र में बंधे रहते हैं उसको बद्ध जीव कहते हैं। जिन्हें भगवान में रुचि नहीं है, जो भगवान को भूल कर माया के प्रभाव में लिप्त रहते हैं, यानी कि हम सब लोग है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे। कृष्ण भगवान को भूलकर अब सब दुनिया में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, यहाँ के अनेक वस्तुओं का भोग लेना चाहते हैं, यहाँ का मालिक बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, सब मेरा है, आई मी एंड माइन, अहम और मम, अहम ममेति, सब कुछ अपना बनाना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। भिखारी भी जहाँ पर भीख मांगता है वो एरिया भी मार्क करता है कि ये मेरी एरिया है, यहाँ पर आप भीख नहीं मांग सकते। ये सच है, झगड़े भी, मारामारी भी होती है, खून खराबा भी होता है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तू यहाँ कैसे बैठा, ये मेरी जगह है, यहाँ पर मैं भीख मांगता हूँ। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो भिखारी होता है उसकी एक एरिया होती है जहाँ पर वो भीख मांगता है। जब उसकी बेटी की शादी होती है तो वो उसमें से एक हिस्सा जमाई को दहेज में देता है कि आप यहाँ से अभी कल से आप यहाँ भीख मांगना। ये सब सच्चाई है। कुछ कुछ परिवार होता है वो दो दो ब्रिज पर भीख मांगते हैं, तो शादी होने के बाद अपने जमाई को आधा ब्रिज दे देते हैं, मतलब यह आधा ब्रिज तुम्हारा। यहाँ तक हमारे अंदर नियंत्रण की भावना होती है, प्रवृत्ति, कि जो भी कर सकते हैं कंट्रोल वो हम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि है हमारा कुछ नहीं, जब मर जाते हैं तो अर्थी उठा के जला देते हैं, क्योंकि कौन सा ब्रिज किसका कौन पूछता है उधर। ये जहाँ पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर सत्ययुग में राजा सुवर्णसेन का राज्य था, अभी किधर है, तो यू बंगाल गवर्नमेंट का हो गया वो, और ये मंदिर किसी और ट्रस्ट के नाम पे है। मतलब हम लोग यहाँ पर आते हैं और जाते हैं, कुछ देर के लिए बोलते हैं हमारा है, कोई बलपूर्वक करते हैं, कोई कायदे से करते हैं, कोई बड़ी लोग पार्जित मतलब पिताजी के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन सब लोगों को मृत्यु के समय सब कुछ यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है। आपके पास 5,000 रुपये हो मरने के समय या 500 करोड़ रुपए हो, दोनों यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है, जो आपका घर है, जो प्रॉपर्टी है, परिवार है। नारद मुनि समझा रहे हैं कि जिनमें आपको आसक्ति है इतनी, परिवार के सदस्यों में आपको पुत्र पुत्री पत्नी अनेक पत्नियां हैं आपकी, आपका राज्य है, आपकी धन संपत्ति है, ये सब जगह पर आपका आसक्ति लगा हुआ है और आप सोच रहे हो कि इनके लिए मेहनत करनी चाहिए, इनको सुख देना चाहिए, लेकिन मृत्यु आती है तो वो सोचती नहीं कि आपकी कितनी आसक्ति है, कितना प्रेम है आपका, कितना आपका परिवार बड़ा है, कितनी धन संपत्ति, कितनी प्रॉपर्टी आपने बना के रखी है, तो आपको थोड़ा और टाइम देंगे एंजॉय करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, जब घंटी बजती है तो सबको जाना पड़ता है तुरंत, और वो घंटी बजने के समय आपकी इन सारी वस्तुओं में आसक्ति अगर नष्ट नहीं हुई है तो फिर घंटी बजने के बाद दोबारा और एक घंटी बजती है, फिर आपको वापस एंट्री मिलती है। हो सकता है प्राणी के शरीर में हो सकता है पंछी के शरीर में हो सकता है जानवर के शरीर में हो सकता है देवता के शरीर में हो, या हो सकता है मनुष्य के शरीर में हो, लेकिन कहाँ पर भी आपका जन्म होगा, कहाँ पर भी जन्म आपका होगा, फिर भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आपके पीछे लगे रहते हैं, चाहे आप पंछी बनो या देवता बनो या मनुष्य बनो। पृथ्वी लोक पर जन्म लो, स्वर्ग लोक में जन्म लो या पाताल लोक में जन्म लो, जहाँ पर भी जन्म लेंगे सब जगह दुख है, स्वर्ग में भी दुख है। क्योंकि स्वर्ग में भी आप सुना होगा बहुत बार इंद्र आदि देवता भी भगवान को भूल जाते हैं, फिर आकर यहाँ वर्षा करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी भूल जाते हैं भगवान को, यहाँ पर बछड़े चुराते हैं, इंद्र को महाप्रसाद मिलता है दुर्वासा मुनि के द्वारा, विष्णु की माला मिलती है वो फेंक देता है हाथी के पैर के नीचे। फिर वो अपराध होने के बाद में क्या होता है, राज्यहीन हो जाते हैं, है कहाँ, स्वर्ग में ही है, राज्यहीन हो जाते हैं, छुप छुप के रहना पड़ता है, राक्षसों का आक्रमण होता है, अपराध के द्वारा देवता बलहीन हो जाते हैं, राक्षस बलवान हो जाते हैं ब्राह्मणों की सेवा करके, समुद्र मंथन करते हैं, फिर नुकसान ही नुकसान होता है, बहुत कष्ट पाते हैं, सम्मान नष्ट हो जाता है। कितनी कहानियां हैं, तो हम लोगों को लगता होगा कि अरे हम लोग तो इधर बंगाल में बैठे हुए पसीना आ रहे हैं, और स्वर्ग में जाएंगे तो कितना अच्छा बॉडी मिलेगा, एकदम टेम्परेचर बहुत बढ़िया रहेगा वहाँ पर, न ज़्यादा न कम, इतने सारे भोग मिलेंगे खाने को, सुंदर स्त्रियाँ मिलेंगी अप्सरा के रूप में, कोई पाप नहीं लगेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो लोग यहाँ पर यज्ञ करते हैं और यहाँ पर यज्ञ करके वहाँ जाने का प्रयास करते हैं, पुण्य इकट्ठा करते हैं और पुण्य के बल पर वहाँ पर जन्म लेते हैं, लेकिन जब पुण्य समाप्त होते हैं फिर दोबारा यहाँ पर आना पड़ता है और यहाँ का जो रियलिटी है उसको सामना करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग का जीवन भी सूक्ष्म रूप से दुखदायी है, यहाँ का जीवन स्थूल रूप से दुखदायी है, लेकिन दुख तो दोनों जगह है, क्योंकि माम उपेत्यतु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने ऐसे नहीं बताया है कि स्वर्गलोक में सुखालयम शाश्वतम, पृथ्वीलोक में दुखालयम अशाश्वतम, नरक लोक में अति दुखालयम अति अशाश्वतम, ऐसा नहीं बताया है। चाहे वो नरक हो, स्वर्ग हो या पृथ्वीलोक हो, सब जगह पर दुखालयम अशाश्वतम, यही एक व्याख्या की गई है। तो अच्छा दिखने से ऐसा लगना जरूरी नहीं है कि अच्छा दिखने से वहाँ पर अच्छी खुशी होगी, अच्छा शरीर मिलेगा तो ज़्यादा खुशी होगी। हाँ, सभी हीरोइन और हीरो लोगों को भी बीमारियाँ होती हैं, उनको भी कैंसर होता है, ज़्यादा करके मन की बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, आत्महत्याएँ करते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है उनको। तो सुंदर शरीर, सुंदर प्रॉपर्टी, सुंदर अधिकार, ये सब प्राप्त होने के बाद में दुख की गारंटी निश्चित है, दुख निश्चित है यहाँ पर। तो नारद मुनि ये सभी बातें सुवर्ण सेन को समझा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं राजा हूँ इसलिए मुझे बहुत आनंद मिलने की संभावना है, मेरा राज्य कितना बड़ा है, मेरी इतनी रानियाँ हैं, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, लेकिन नारद मुनि जी का काम यही है सच्चाई का परिचय करा देना। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि के संग से सुवर्ण सेन बड़े प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए संतों का संग करना चाहिए, जैसा संग वैसा रंग। अगर सोने वाले के बाजू में बैठेंगे कथा में तो क्या होगा, नींद आ जाएगी। जो लोग बहुत टेक के बैठे हुए हैं उनके बाजू में बैठेंगे आप भी टेकते रहेंगे इसे। जो लोग झपकियाँ ले रहे हैं उनके बाजू में बैठेंगे तो आप झपकी लेंगे, जैसा संग वैसा रंग। और जो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, एकदम अपने आत्मा को कान में लाकर रखा है और क्या कहा जा रहा है सुन रहे हैं, तो आप भी सुनेंगे और वो भी आपको जगाएंगे। प्रभु जी सोना नहीं, ये जगे रहने वाले लोगों की जगह है, डोंट स्लीप हियर। क्योंकि जो जगे रहते हैं उनको सोने वाला बीच में आएगा तो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको बोलते हैं प्रभु जी डोंट स्लीप गेट अप। आपको भी करना चाहिए, आपके आजू बाजू में कोई सोता होगा तो आप जब उसको जगाते हो तो उसका अपराध नहीं कर रहे हो, उसका नुकसान नहीं कर रहे हो, उसका अहंकार को तकलीफ होगी आप जगाएंगे तो, अरे क्या हो मैं थोड़ी सो रहा था, मैं तो ध्यान कर रहा था, आँख बंद करके सुन रहा था मैं, आप लोग सो रहे हो, आपका मन कहीं भटक रहा है, मैं आँख बंद करके एकला होकर सुन रहा हूँ, ऐसा उसका अहंकार बताएगा आपको। लेकिन आपको बड़ी प्रेम से और करुणा से उनको जगाना चाहिए, क्योंकि जप में कथा में सोना ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत घातक है। क्योंकि जप करते समय हमारा भगवान का संपर्क होता है और कथा में भी हमारा भगवान का संपर्क होता है, और जब भगवान का संपर्क करने का मौका है तभी आप सो जाते हो तो क्या होगा, यही जीवन का एक मौका है। जब संकीर्तन होता है तो लोग कम सोते हैं, क्योंकि संकीर्तन में हमारे हाथ पैर सब चलते रहते हैं तो सोने की संभावना कम रहती है, लेकिन जप में और कथा में सोने की संभावना होती है, क्योंकि हम लोग शांत बैठे होते हैं, हमारे सारे इंद्रिय जो है शिथिल हो जाते हैं तो तुरंत हमारी नींद निद्रा देवी आ जाती है। तो प्रयत्न नहीं करेंगे तो नींद आना स्वाभाविक है, आश्चर्यकारक बात नहीं है। जगे रहकर सुनना, जगे रहकर जप करना, ये आश्चर्यकारक चीज़ है। और ये जीवन जो है कलयुग में कहा गया है कि हमको जंगल में जाकर फल फूल खाकर तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परिवार को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, धन दौलत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी धंधा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर गृहस्थ हो तो गृहस्थ में आप रह सकते हो, जहाँ पर हो वहाँ रह सकते हो, धन कमा सकते हो, परिवार रख सकते हो, बाल बच्चे रख सकते हो, थोड़ी बहुत सुविधा घर में रख सकते हो, लेकिन जीवन के उद्देश्य को नहीं भूलना है। चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहे थाको वन्ने थाको सदा हरि बोले थाको, गृहे थाको वन्ने थाको सदा हरि बोले थाको, सुखे दुखे बोले ना को बदने हरि नाम करो रे, गाय गोरा मधुर स्वरे नाम गाय गोरा मधुर स्वरे। गौरांग महाप्रभु पुकार रहे हैं कि जहां भी रहो गृहे थाको घर में रहो, वन में थाको वनवासी बनो, वानप्रस्थी बनो, सन्यासी बनो, सदा हरि बोले डाको, कहीं भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उच्च रंच नहीं है, जहां पर भगवान का नाम है वही व्यक्ति उच्च है। गृहस्थी में रहकर भगवान का नाम लेते हो तो आप भी श्रेष्ठ हो, और सन्यासी बनकर भी अगर यहां वहां देखता है भगवान के नाम में ध्यान नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है उसका। तो गृहस्थी आप सब लोग हैं, लेकिन आपका लक्ष्य जो है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं इस आश्रम में हूँ या किसी आश्रम में हूँ, भगवान के नाम में मेरा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए गृहस्थ जीवन में क्या होना चाहिए, दिन भर मेहनत करते हैं हम लोग, थक जाते हैं शाम को, लेकिन इस तरह से दिन का प्लानिंग करते हैं, सुबह जल्दी उठकर ध्यानपूर्वक भगवान का जप होना चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यक है, शाम को जल्दी खाना है, जल्दी सो जाना है, टीवी देखना नहीं है, व्हाट्सएप पर मोबाइल पर बैठना नहीं है, जितना जल्दी हो सके बेफजूल की बातें नहीं करनी है, जल्दी सोना है, जल्दी खाकर दो एक घंटा रुक कर फिर जल्दी सोना है, जल्दी उठना है ताकि नींद पूरी हो जाएगी, जब में बैठेंगे तो झपकी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। इस तरह से जीवन को मोल्ड करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। अगर आपको सुबह 4 बजे का ट्रेन पकड़ना है समझो, तो 2 बजे उठते ना, उस दिन को एडजस्ट करते हैं, कल जल्दी उठना है तो जल्दी थोड़ा हल्का खाना खाएंगे, जल्दी सो जाएंगे और जल्दी उठ के ट्रेन पकड़ेंगे और बची हुई नींद ट्रेन में पूरी करेंगे। ऐसा आपने किया ना अभी सावंतवाड़ी से पुना, पुना से हावड़ा, ये मनुष्य जीवन का बुद्धि है कि बुद्धि से आपको अपने जीवन में इस तरह से व्यवस्था करनी है कि आपका भगवान के नाम पर ध्यान रहे, भगवान की कथा में ध्यान रहे, भगवान की सेवा में आने का प्रवेश करने का मौका आपको मिले। इस तरह से आपके जीवन को इस तरह से आपके जीवन को आपको एडजस्ट करना है। नारद मुनि यही बता रहे हैं, भले आप धनवान हो, पांडव भी बहुत धनवान थे, अम्बरीश महाराज बहुत धनवान थे, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज अति धनवान थे वो, लेकिन धन का उनके मन पर प्रभाव नहीं था। उनका मन जो है भगवान में लीन था, भगवान में ही वो एकाग्र था। इसका प्रूफ क्या है कि जब भगवान चले गए इस धाम को छोड़कर, तुरंत सब कुछ छोड़ के वो भी चले गए। ऐसा नहीं बोला इतना सारा धन है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना राज्य है, कैसे करेंगे। तो ये जो नारद मुनि ने यहाँ पर बोध दिया है वो केवल सत्ययुग में राजा सुवर्णसेन को लागू नहीं है, ये हम सबको लागू है। हम सबको भी देखना है कि हम सब लोग कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को भूलकर यहाँ पर भोग लेने के लिए आए हैं, स्वामी बनने के लिए आए हैं, मालिक बनने के लिए आए हैं, नियंत्रण करने के लिए आए हैं, जितना हो सके उतना अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने प्रॉपर्टी पर। लेकिन सब कुछ झूठ है और मिथ्या है, सब कुछ एक क्षण में घंटी बजेगी तो छोड़ के जाना है आपको। टाइम प्लीज़, 5 मिनट देना, ज़रा बात करना है बीवी से, चाबी कहाँ रखे बताना है। नो सर, नॉट पॉसिबल। और उस समय में अगर भगवान की याद आना ज़रूरी है तो अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप परिवार में हो, बच्चे में हो, प्रॉपर्टी में हो, नौकरी धंधे में हो, अभी आपको प्रैक्टिस करना है। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी हो, जवान हो, बूढ़े हो, सुंदर हो, कुरूप हो, बीमार हो, अच्छे हो, धनवान हो, गरीब हो, जितना चाहे वर्णन कर लो, किसी भी अवस्था में आप हो, आपको आज से अभ्यास करना होगा, आज से प्रैक्टिस करना होगा उनका ध्यान करने के लिए। इसलिए बहुत सारे कार्य हम करते हैं, उसमें से एक है यात्रा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो हमको रोज खींचता है अपने जीवन में, है ना, अरे नौकरी जाना है, अरे काम पे जाना है, अरे ये सत्संग को टाइम नहीं है, अभी मीटिंग है, ये है, वो है, दिन रात हम भागते रहते हैं शरीर को पालने के लिए। तो कुछ दिन के लिए सब छोड़ देते हैं, लीव ले लेते हैं और फिर धाम में आते हैं। अकेले नहीं आते हैं, भक्तों के साथ में आते हैं, और भक्तों के संग में भगवान ने जहाँ पर लीला किया उन स्थानों का प्रेम से दर्शन करना चाहते हैं, उनके सार को ग्रहण करना चाहते हैं। ये स्टोरी जो है ना, मैं आपको 3 मिनट में बता सकता हूँ, केवल 3 मिनट में, लेकिन 3 मिनट में अगर कहूँगा तो आपके लिए जो मैसेज उसके अंदर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। 3 मिनट में कहा था सुने, अगली जगह 4 मिनट, अगली जगह 5 मिनट में, इस तरह से एक दिन में चारों सब धाम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी यात्रा का उद्देश्य क्या है कि हर एक स्थान में हमारे लिए मैसेज क्या है, घर क्या लेके जाना है, किस पर चिंतन करना है, आज का मैसेज क्या है हमारे लिए, और बॉम्बे जाकर कैसे उसको उतारना है। ये नहीं कि यहाँ पर जो प्राप्त किया यही छोड़ दिया, घर पे चले गए, सब कुछ वैसे वापस, एक टोपी यहाँ पर फेंक दिया, दूसरा टोपी पहन के चालू अपना काम, नहीं है। ये सारा जो सारांश है इसका, वो आत्मा पर आपको ग्रहण करना है, आत्मरूप में ग्रहण करना है, आत्मा के स्तर पर ग्रहण करना है और जीवन में उतारना है। यात्रा अभी आप कर रहे हो, लेकिन सही यात्रा आपके बॉम्बे जाने के बाद शुरू होती है, या तो आपके शहर में जाने के बाद शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने सीखा वो वहाँ पर जीवन में उतारा तो आपकी यात्रा सफल है। यहाँ पर जो सीखा यहीं भूल गए, मुंबई जाके मुंबई जैसे दोबारा बन गए, तो हमारी यात्रा पूरी असफल है, सारा पैसा, समय, लीव सब बेकार है। इसलिए ज़्यादा समय लेते हैं बताने के लिए। यहाँ का सार क्या है, नारद मुनि के संग के वजह से राजा समुद्रसेन का उद्धार हुआ, कुछ समझ में आया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि राज छोड़ के सन्यासी बन गए, परिवार को छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ के सन्यासी बन के जंगल चले गए, नहीं, राजा ही बने रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपने कर्तव्यों को छोड़कर भागना नहीं आपको, लेकिन उन कर्तव्यों को निभाते हुए कृष्ण भावना में रहना है। जो पीछे दीवार पर टेक के बैठे उनको जगाओ, दीवार को टेक के बैठेंगे तो नींद ही आने वाली है, तो इतना दूर आके फायदा क्या, समुद्रगढ़ में समुद्रसेन ने सुवर्ण विहार में आके फायदा क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने राज्य में रहे लेकिन भगवान में मन लगाना शुरू किया, भगवान का भजन किया, प्रार्थना किया, पूजा किया, तपस्या किया, राज्य में रहते हुए कर्तव्य को निभाते हुए, और उसका नतीजा ये हुआ कि राजा के रूप में ही सत्ययुग में, अभी कलयुग तो आया नहीं है, गौरांग महाप्रभु का अवतार समय तो कलयुग है, वो भी कलयुग के 5000 साल बाद में, आज से 500 साल पहले की बात है, कलयुग शुरू होने के बाद 5000 साल की बात है। सत्ययुग मतलब कितने हैं, करीब करीब 10-15 करोड़ साल के पहले की बात है, तभी ये लीला चल रही है। लेकिन तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया, क्योंकि अपना बोध देते हुए नारद मुनि ने उनको समझाया था कि तुमको पता नहीं है तुम्हारा राज्य कहाँ पर है, तुम्हारा राज्य नवद्वीप धाम में है, अब ये प्रकट नहीं हुआ है अब तक, लेकिन तुम जहाँ पर राज्य कर रहे हो ये सुवर्ण सेन का जो राज्य है ये गोद्रुम में है, तभी भी गोद्रुम में ही था क्योंकि भूमि तो वही है ना, प्रकट होगी बाद में गोद्रुम के रूप में यथावकाश जब भगवान की इच्छा होगी। तो नारद मुनि कहते हैं तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, तुम्हारा राज्य ही नवद्वीप में है, गोद्रुम द्वीप में है, अभी इसको समझो और भगवान को ध्यान करो। तो उसके पश्चात जब उसकी मति बदली हो गई, भोगवादी मति कृष्णवादी कृष्ण भावना प्रणुत वाली बन गई, तो उनको इसी जगह पर उसी अवस्था में महाप्रभु का दर्शन हुआ और महाप्रभु जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शुद्ध भावना से जो नारद मुनि की कृपा से आपको भावना प्राप्त हो गई है उस शुद्ध भावना से बड़ा प्रसन्न हूँ मैं, तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि जब मैं कलयुग में आऊँगा गौरांग महाप्रभु इस रूप में अवतार करूँगा, नाम प्रचार करूँगा, प्रेम लीला करूँगा, सबको प्रेम बांटूँगा, पूरे विश्व को प्रेम में डुबो दूंगा कृष्ण प्रेम में, उस समय आप बुद्धिमंत नाम से जन्म लोगे और बुद्धिमंत नाम के जन्म लेने के पश्चात आप मेरी बहुत सेवा करोगे। मतलब क्या हुआ, जब हम भोग इच्छाओं से हटकर भगवान भावना भावित बन जाते हैं तो हमको भगवान का संग मिलता है और भगवान की उसके ऊपर जाके क्या होता है, सेवा प्राप्त होती है। सर्वोच्च भगवान का कनेक्शन क्या है, भगवान की सेवा, जो भगवान का नाम जप करने से प्राप्त होती है, भगवान का नाम जप करना भी उनकी सेवा है। तो यहाँ पर बुद्धिमंत खान के रूप में भगवान ने उनको सेवा दिया, क्या सेवा दिया, जब भी भगवान का विवाह हुआ विष्णुप्रिया के साथ तो विवाह का सारा खर्चा बुद्धिमंत ने किया, जब नाटिकाएं होती थी चंद्रशेखर भवन में तो सारे ड्रेस लाते ना ड्रेस वाले से, वो सारा स्पॉन्सरशिप बुद्धिमंत ने किया था, इस तरह से वो धनी व्यक्ति थे ना, तभी भी धनी व्यक्ति के रूप में जन्म लिया उसने। तो विष्णुप्रिया की शादी में पूरा खर्चा दिया और नाटका में उनके सारे वस्त्रों का खर्चा किया, और जब चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त लोग जगन्नाथपुरी में यात्रा किया करते थे तो उसका भी सारा खर्चा, बहुत सारा खर्चा ये दिया करते थे। ऐसे ही एक शिवानंद सेन नाम के भक्त थे, वो भी भक्तों की बहुत सेवा करते थे, बहुत धनी थे वो, लेकिन सारा उनका धन जो था वो हमेशा भगवान को भोजन, भक्तों को भोजन कराने में, भक्तों को यात्रा कराने में, भक्तों की यात्रा की रूम की व्यवस्था में, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ट्रैवलिंग की व्यवस्था, सब करने में धन को लगाते थे। ऐसा करने से हमारा धन जो है वो शुद्ध हो जाता है, धन के अंदर हमारी मति को भ्रष्ट करने की शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है जब हम धन को भगवान के भक्तों की सेवा में लगाते हैं या डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस तरह से ये सुवर्ण विहार की छोटी सी कहानी समाप्त होती है। तो कलयुग में जब ठाकुर भक्ति विनोद के पुत्र जिनके समाधि में हम कल गए थे, ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद जी के हमारे गुरु हैं, एक बार वो यहाँ से अपने पिता के घर से जहाँ हम जाएंगे अभी, वहाँ से नरसिंहपल्ली की ओर जा रहे थे, वहाँ पर भी हम जाएंगे, रास्ते में अचानक रुक गए, एक जंगल की ओर देखने लगे, बहुत घना जंगल था, लोग कहते थे कि यहाँ पर शेर वगैरह आते हैं, बहुत भयंकर जंगल था वो। तो उन्होंने कहा कि ये जंगल की जगह हमको चाहिए, शिष्यों को भेजा जाओ ये जगह का भाव क्या है पूछो, मुझे खरीदना है जगह यहाँ पर। तो शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि महाराज जी जंगल में क्यों जगह लेना चाहते हैं। तो बहुत ढूंढ के उस मालिक को ढूंढा कि कौन है जगह का मालिक, वो भी ठाकुर भक्ति सिद्धांत को जानता था कि बड़े संत हैं, तो विशेष रूप से आए और बताया महाराज जी यहाँ पर जगह मत लो आप, अभी जिसको बेचना था तो बेचता था लेकिन वो जानते थे कि संत हैं इनको हमको चीट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये जगह मत लो यहाँ पर, आप बहुत जंगल यहाँ पर है, घना जंगल है, यहाँ पर क्या करोगे आप, शेर आते हैं, सिंह आते हैं, बहुत सारे खूंखार जानवर भी आते हैं, सुरक्षित जगह नहीं है ये। फिर भी ठाकुर जी ने जिद किया कि हमको यही जगह चाहिए, फिर वो जगह लिया उन्होंने। तो लगने लगा कि महाराज जी को पता नहीं क्या करना चाहिए, लोकल नॉलेज नहीं है उनको। फिर अपने भक्तों को भेजा, वह जाओ जंगल में जाकर खोज करो, कोई अद्भुत वस्तु आपको मिलेगी। तो क्या हुआ, उनको अति पुरातन महलों के क्या कह रहे अवशेष मिले उनको, जैसे कोई बहुत बड़ा महल होगा उसके टूटे फूटे अवशेष मिलने लगे, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, महाराज जी को भाग भाग के बताया। तो फिर बाद में उन्होंने सब भक्तों को ये कहानी सुनाई, ये सुवर्ण सिंह राजा का महल है, ये सुवर्ण विहार कहते हैं इसको, यहीं पर सुवर्ण सिंह राजा को नारद मुनि ने बोध दिया था, इसलिए मैंने आपको ये जगह खरीदने को कहा। तो आज हम उस जंगल में बैठे हैं जिसमें सुंदर मंदिर बना हुआ है। ठाकुर भक्ति सिद्धांत की कृपा से ये मंदिर बना, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस स्थान को देखा, उसका अनुभव किया, साक्षात्कार किया, और जंगल में फिर सब निकाल कर अच्छा मंदिर बनाया, ठाकुर जी का विग्रह स्थापन किया। अभी आप इस मंदिर से बाहर जाएंगे ऐसे लेफ्ट साइड में जहाँ प्रभु जी खड़े हैं बच्चे को लेकर, उसके उस साइड में जाएंगे तो आपको उस मंदिर के होते हैं ना स्तंभ खंभे होते हैं ना, कुछ अवशेष मिलेंगे आपको वहाँ पर, बहुत सारे अवशेष थे। लेकिन हमारे भारत में कैसा होता है ना, हम लोग बड़े दुर्भाग्य लोग हैं, जो भी कीमती लगता है उसको बेच देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारा सामान तो ब्रिटिशों को बेच दिया, और कुछ लोग वो चोरी करके ले गए, कोहिनूर हीरा, शिवाजी तलवार की तलवार, भवानी, टीपू सुल्तान की तलवार, इसका टोपा, उसका टोपा, जगह जो चीज़ें थी सब बेच दिया, या तो चोरी करने को दिया, या तो उनको उनसे पैसा लेके चोरी करने को उनको हेल्प किया। आज भी यही स्थिति है हमारे वृंदावन में और कई स्थानों में, प्राचीन अमूल्य बहुमूल्य अष्टधातु की मूर्तियां हैं जो आज मिलती नहीं है, बनी नहीं सकती नहीं, एक एक की कीमत करोड़ों में है। तो लोकल लोग जो है वो क्या करते हैं, चोरों के साथ में मिल जाते हैं, उनसे करोड़ों रुपये लेते हैं और मूर्ति को बेच देते हैं। राधा रमन की मूर्ति है नंदगांव के रास्ते पर संकेत वन में, इतनी प्राचीन मूर्ति है और इतने दिव्य धातु है उसके अंदर, आज की तारीख में कुछ 8-9 करोड़ की कीमत है उस मूर्ति की। तो चोरी हो गई वो, फिर चोरी होने के बाद में कई महीने के बाद में सब ब्रजवासी जो प्रामाणिक ब्रजवासी थे वो बहुत ही निश्चय में आ गए कि नहीं ढूंढ के निकालेंगे उसको, तो बहुत महीने के बाद में मिल गई वो और दोबारा प्रस्थापित की गई। अभी वहाँ पर सुरक्षा लगाई गई है कि दोबारा चोरी ना हो जाए। यहाँ पर भी अब एक जगह जाएंगे हम लोग, उसका नाम है हरिहर क्षेत्र, स्वयं प्रकट मूर्ति है वो, आदि विष्णु आदि शिव जी की, किसने बनाई नहीं उसको, वो भी चोरी हो गई थी। एक यात्रा में हम लोग आए थे तो वो यात्रा में मूर्ति देखा हमने, क्योंकि हम लोग 25-30 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, एक यात्रा में आए तो दर्शन किया, अगली यात्रा में आए तो बोले चोरी हो गई है, मूर्ति है नहीं है, दूसरी यात्रा में आए तो बोले कि अभी पुलिस स्टेशन में है क्योंकि केस चल रहा है उसका, और कुछ भक्त लोग पुलिस स्टेशन में उनको भोग लगा रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, क्या भक्तों का भाव है, क्या करें। फिर अगली बार आए तो फिर अपने मंदिर में दिखाई दिया, मान मंदिर में राधा मान बिहारी लाल इतनी बढ़िया सेवा करते हैं उनकी, वहाँ पर राधा रानी ने मान किया था, रूठ कर बैठी थी, रोई थी बहुत, कृष्ण मनाने गए थे वहाँ पर, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही प्राचीन और रमणीक स्थान है, लीला स्थलीय भगवान की, हृदय के लिए बहुत शुद्धिकारी है। तो वो जो मान बिहारी लाल है वो ब्रजवासियों की यात्रा में भी सफ़र करते थे, मतलब उनको वो लेके ही जाते थे सब जगह पर, 84 कोस की 40 दिन की यात्रा होती थी, अभी भी होती है हर साल, तो वो ठाकुर जी को मंदिर को उठाकर ले जाते हैं। एक भक्त है उनका नाम ही रखा है गरुड़ जी, वो उनको सर पे लेकर जगह जगह ले जाते हैं पैदल, और जहाँ रुकना रात को वहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर उनकी आरती पूजा होती है, उनके सामने कीर्तन प्रवचन होता है, फिर आगे चलते हैं। लेकिन मंदिर वो मूर्ति जो है वो इतनी सुंदर उसको रखते थे, वो रोज़ नहलाते थे मूर्ति को, स्नान करके एकदम चमकती थी मूर्ति वो, तो किसी यात्री को लगा कि सोने की मूर्ति होगी तो उसने चोरी कर ली उसको, और वो भी भक्त था हमारे आप जैसा जब करने वाला। लेकिन जब अच्छा संग नहीं होता है ना, भक्त होने पर भी अगर अच्छा संग नहीं है आपका तो फिर मति भ्रष्ट हो जाती है। तिलक धारण कर लिया आपने, कंठी माला पहन लिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, चाय कॉफ़ी छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, जप करना शुरू किया, सब कुछ आपका चल रहा है, लेकिन संग जो है आपका ऐसे लोगों से है जो बहुत ज़्यादा पैसे में मन रखते हैं अपना, जो बहुत ज़्यादा भोग में मन रखते हैं, ज़्यादा बिजनेस में मन रखते हैं। कथा में भी आएंगे तो देखेंगे किसी को मेंबर बना दे क्या LIC का, वो पॉलिसी बेच दे क्या, किसी को स्टील बेच दे अपना, किसी का कोई बिजनेस है तो कॉन्टैक्ट करके, अच्छा लोगों का समुदाय है, अच्छे लोग भी पढ़े लिखे यहाँ पर हैं, कोई मेरा फ्री में इलाज कर देगा, कोई मेरा बिजनेस का काम कर देगा, कोई मेरा पॉलिसी खरीदेगा, ऐसा होता है। अपने ही मूड में रहते लोग, अपने ही मूड में रहते हैं, जो विचार उनका जीवन में वही लोगों को बांटते रहते हैं, उनके मन में जो वही बातें करते रहते हैं। तो ऐसे ही भक्त था वो, गौड़ीय वैष्णव था, राधा मान बिहारी की मूर्ति चोरी कर ली उसने, और वो वृंदावन से लेकर उसको नवद्वीप में लेके आया, बोलो। तो कोई ज्योतिषी ने देखा कि कहाँ गए हो गए, तो उन्होंने कहा कि बंगाल की ओर गए हैं। तो वहाँ के जो डेस्परेट ब्रजवासी थे वो बड़े दुखी थे, रोते थे, बहुत रो रहे थे कि मान बिहारी लाल चले गए, क्या हमसे नाराज़ हो गए, हमसे सेवा नहीं उनको अच्छी लगी, दुखी हो गए, तो उनको लाना ही है करके बहुत ब्रजवासी लोग, नंदगांव के गोस्वामी लोग यहाँ आए। और फिर उसको कहा ऐसा आदमी कौन 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 करते 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 इस्कॉन के मायापुर मंदिर में आए। वो भक्त जो था चोरी करके आया था, वो भी कुछ दिन मायापुर में मान बिहारी लाल को लेके आया था, तो लोग समझते थे कि इस बात कोई मूर्ति है। बाद में वो चला गया, तो करते 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 उसके गांव में चले गए, दूर गांव में। उसका विचार क्या था, उस मूर्ति को पिघला के सोना उसको बेचना था। मूर्ति थी ब्रास की, पीतल की मूर्ति थी, लेकिन जिस तरह से सेवा करके रखी थी तो लग रहा था कि सोने की मूर्ति, तो चोरी हो गई वो। तो फिर उन्होंने उनको पकड़ा, अरेस्ट करवाया उसको, इस्कॉन के भक्तों ने सहायता किया, कुछ पुलिस लोगों ने भी पहचान के लोगों ने सहायता किया, और उसको ढूंढ के निकाला। और इतने रोए ब्रजवासी वहाँ पर, अरे मान बिहारी लाल मिल गए। और फिर मान बिहारी लाल को कुछ दिन जेल में रखा, मतलब जेल में थे वो, क्योंकि वो पंचनामा वो किया जो भी कुछ पेपर वर्क है होना चाहिए ना, कि भाई आपकी मूर्ति है आप यहाँ से वगैरह सब कुछ कन्फर्म करने के बाद में। उतने दिन पुलिस चौकी में उनको भोग लगाया गया, पुलिस चौकी में किचन बनाकर खाना बनाया गया, उनको अर्पण किया गया, उनकी आरती पूजा की गई, सब पुलिस चौकी में जितने कैदी थे उन दर्शन किया, पुलिस अफसर ने दर्शन किया। हाँ, नंदगांव के सॉरी मायापुर के सब भक्त लोग जो लोकल धामवासी हैं वो सब आए, उन्होंने दर्शन किया, धन्य हो गए, अरे मान बिहारी लाल मानगढ़ के भगवान अरे हमारे धाम में आ गए। और फिर उसको उनको वापस ले गए, हवाई जहाज से ले गए, और दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर उनका जुलूस निकाला, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर 150 किलोमीटर पैदल जुलूस निकाल के उनको मानगढ़ तक लेके गए, और जगह जगह सब लोग ने पुष्प वर्षा की, उनके ऊपर भोग लगाया, उनकी आरती पूजा की। और ब्रज के जब गेट पे आए तो वहाँ पर ब्रज के एंट्रेंस में भी बहुत भव्य स्वागत किया गया उनका, लोकल ऑफिसर्स भी आ गए, उन्होंने बहुत भव्य उनका स्वागत किया, और बहुत ही समारंभ पूर्वक उनको मान मंदिर में फिर स्थापन किया गया। और बीच में क्या हुआ, मंदिर खाली, सब लोग दुखी हैं कि हमारी धरोहर हमारा धन हमारे प्राण धन चले गए। तो यहाँ पर भी यही था, बहुत सारे महल के अवशेष थे लेकिन लोग एक एक करके लेके चले गए। फिर उसको यहाँ के मंदिरों के लोगों ने उसको अंदर सुरक्षित जगह पे रखा, फिर भी वहाँ पर बाहर है लेकिन अभी कम से कम प्रॉपर्टी के अंदर सुरक्षित है। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग यात्री आप लोग यहाँ पर आएंगे, आपको दर्शन तो होना चाहिए ना कि यहाँ पर क्या धरोहर है, क्या कथा है, और सब सत्य कथाएँ, ऐसा नहीं कि ये सब किसने बनाया बवाल लोगों को पैसा बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। धाम में हम लोग आते क्यों हैं, धाम का दर्शन करने के लिए आते हैं, धाम के बारे में सुनने को आते हैं, धाम के विषय में जो देखना है वो देखने को आते हैं, हर इंद्रिया से आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, और इसलिए यात्रा में आना चाहिए। अरे अच्छी हवा हरियाली है, अच्छा फणस का पेड़ है, वो देखने को नहीं आते हम लोग, वो भी देखते हैं, ऐसे नहीं देखते नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान को देखते हैं, सबसे पहले भगवान के बारे में सुनते हैं, सबसे पहले भगवान के संबंधित जो वस्तु है उसको देखते हैं। भगवान के संबंधित वस्तुओं को देखने से भी, उनके बारे में सुनने से भी आत्मा की शुद्धि होती है, इसलिए इतना दूर हम लोग आते हैं। तो इस तरह से ये सुवर्ण विहार की लीला है यहाँ पर। और एक बात है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि धाम जो है वो हमारी नज़र से लुप्त हो सकता है, अगर हमारी भावना सही नहीं है, धाम अपनी लीला को छुपा लेता है। लेकिन जब कोई संत आता है, जैसे भक्ति सुदान सरस्वती के आने के पहले तो जंगल था, कोई नहीं जा रहा था वहाँ पर, आज से केवल 100 साल पहले की बात है, सत्ययुग की लीला है, तब से प्रकट है लीला यहाँ पर, लेकिन वो स्थान कोई संत का स्पर्श नहीं हुआ, तब तक वो अप्रकट थी, लुप्त हो गई थी। संत ने हृदय में साक्षात्कार किया, तो ज्ञान भी है साक्षात्कार भी है, और वो जगह को खरीदा और डेवलप किया, और आज आपके सामने सुवर्ण विहार के रूप में ये जगह प्रस्तुत है। तो हम संतों के सदैव ऋणी हैं, क्योंकि संत लोग ही धाम को बनाए रखते हैं, धाम को प्रकट करते हैं, धाम का महात्म्य और गौरव भी हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। वैसे मान मंदिर में भी ऐसा ही है, डाकुओं का अड्डा था वो मान मंदिर, लाखों लोग अपना लुटा हुआ सामान लाकर वहाँ छुपाते थे, और वहाँ शेर भी आते थे, कोई जाने की हिम्मत नहीं करते थे, वहाँ डाकू लाकर अपना अड्डा बनाते थे, वहाँ चरस गांजा शराब पीते थे। वो जगह पर एक महात्मा पहुंच गए, बहुत धमकियां दी गई उनको, चले जाओ आप, मार देंगे आपको, गला काटेंगे आपका। बोले मरने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो करना है करो। तो कुछ नहीं हुआ, आज भी वहाँ पर रहते हैं, 60 साल हो गए। लेकिन एक संत के आने से मानगढ़ और मान मंदिर और बरसाना का जो गौरव है पूरे आज 178 देश में प्रकाशित हो गया है। 178 लोग, देश के लोग जो है वहाँ पर आते हैं सत्संग करने के लिए। और ब्रज में और भी ऐसे कोई जगह है जहाँ पर वो संत रहता नहीं है तो आपको कोई जाता नहीं है। और कहा गया है कि ब्रज में 600 करोड़ पवित्र स्थान है, 60 बिलियन, 600 करोड़ लीला स्थलियाँ हैं, लेकिन सब लुप्त तो हो चुकी हैं। जहाँ जहाँ संत आज रह रहे हैं वो लीलाएँ प्रकट हो रही हैं। तो यहाँ पर ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी आए, उनका चरण स्पर्श हुआ, उनकी इच्छा हुई, ये धाम प्रकट हुआ और आपके सामने आज प्रस्तुत है। इसलिए मनुष्य जीवन में हम संतों के सदैव ऋणी हैं। हमारे पर डायरेक्ट कुछ कृपा हो गई है नहीं हुई, लेकिन फिर भी संतों की कृपा से हमको भक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई भक्त आया होगा, इसलिए आप इस यात्रा में आए हो आज। अगर कोई डिवोटी आपको नहीं मिलता था तो आपके जीवन में भगवान का नाम नहीं आता था, आपको कोई बताता नहीं कि चाय कॉफ़ी छोड़ना चाहिए। कितने लोग चाय कॉफ़ी के नशा के आदी हैं, सर दुखता है उनका। बोले हमको व्यसन नहीं, हम तो दिन में दो पीते हैं, लेकिन दो नहीं पियेंगे सर दुखता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, तकलीफ होती है, रुक रुक के जाके रोड पे जाके चाय पीते हैं। ये हमारी क्या कहते हैं उसको, बदनसीबी है, बैड लक है हमारा कि हम लोग ऐसे केमिकल के आदी हैं। लेकिन संतों के कृपा से धीरे धीरे ये बुरी आदतें हम छूट जाते हैं। हमने इतना स्ट्रिक्ट नहीं किया है चाय कॉफ़ी के बारे में, लोग चाय पीते हैं कथा में बाजू में जाकर। लेकिन हमारे आपको विनती है, कोशिश कीजिए और इन छोटे और मोटे व्यसनों से मुक्त हो जाइए। हम भी चाय पीते थे पहले, बहुत एक्सपर्ट चाय बनाने में थे। हमारे हॉस्टल में हमारे रूम पे लोग चाय पीने को आते थे, स्पेशल चाय, लेकिन छोड़ दिया। एक दिन उठाकर सब गार्डन में फेंक दिया उसको, ताजमहल, ब्रुक बॉन्ड, क्या क्या नाम थे उसके, कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। सब मन में होता है सब कुछ। एक बार निश्चय कर लेंगे इन सब आदतों को छोड़ देंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। अरे इस्कॉन के अंदर ऐसे ऐसे भक्त जो भक्त बने हैं वो ड्रग एडिक्ट थे पहले, ब्राउन शुगर, हीरोइन, LSD, मारिजुआना, ऐसे भयंकर नशा करते थे वो। केवल भगवान का नाम जप करके सब छोड़ दिया उन्होंने। और आज वो कौन है, आज वो सब संत बने हुए हैं, संत बनकर गुरु बने हुए हैं, उनको हजारों शिष्य हैं विदेश विदेश में। मतलब पतित अवस्था से, ड्रग एडिक्ट, इतने गिरी हुई अवस्था से इतना उनका उद्धार हो गया, क्यों, प्रभुपाद जी का संग किया उन्होंने, उनकी कृपा से भगवान का नाम ग्रहण किया और नाम के बल से सभी व्यसनों को छोड़ दिया उन्होंने। ये सिगरेट तंबाकू और ये तो चाय कॉफी तो एकदम मामूली नशा है, वो भयंकर नशा करते थे। हमारे कॉलेज में भी एक लड़का था जो भी मैड्रिक्स की गोलियां, डाइजपम की गोलियां, चरस का गोलियां, ब्राउन शुगर, ये सब शराब में डाल के पीता था वो। 8 साल सीनियर था हमसे, पास ही नहीं होता था क्योंकि पढ़ाई करता नहीं था, खाली ड्रग्स ही लेता था। एक दिन उसको लगा कि नहीं करना चाहिए सब कुछ, ये हनुमान के मंदिर में गया, उसको प्रेरणा हुई, फिर राम का नाम लूंगा, हनुमान जी का नाम लूंगा, मर जाऊंगा लेकिन मैं अभी नशा नहीं करूंगा। 6 महीने रात भर नहीं सोया वो, क्योंकि इतनी नशा करता था ना, उसको नींद कैसे आएगी। 6 महीने रात भर चिल्लाता था, राम राम हनुमान 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 40 चिल्लाता था। 6 महीने के बाद में नशा से मुक्त हो गया, फिर पास हो गया MBBS, क्योंकि उसने निश्चय किया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कोई भी नशा नहीं करूंगा। मरा नहीं वो बिल्कुल, अभी भी जिंदा है। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे अंदर इन बुरी आदतों को छोड़ने की इच्छा ही नहीं है। हम कहते हैं यात्रा में जाएंगे, प्रभु जी ने बताया है हम लोग, लेकिन बीच में जाकर चाय पी के आएंगे क्योंकि हमको पीना है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन भगवान की प्राप्ति करनी है तो इस चाय कॉफ़ी को, लहसुन प्याज को हमारे और भगवान के बीच में आने को मत दीजिए, क्योंकि जब तक हम पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आप कहेंगे चाय कॉफ़ी में इतना क्या है, उतना नशा क्या है, बोले किसी को मारते जाके नशे में, लेकिन नशा तो नशा ही होती है जिसमें हम क्या कहते हैं उसको, निर्भर रहते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता, बना बैटरी चार्ज नहीं होता है उससे, विचारधारा ही बंद हो जाती है, हाँ विचार करने की शक्ति बंद हो जाती है, एकाग्रता खत्म हो जाती है। इसका मतलब हम उस पर निर्भर है, हमारे शरीर को उसकी आदत लग गई है, बेहोश नहीं हो रहे हम चाय पी के लेकिन आदत है हमें, हमारा सिस्टम जो है उस पर कंडीशन हो गया है। तो जब ये हम छोड़ देंगे तब हम तुलसी माला पहन सकते हैं। चाय कॉफ़ी लहसुन प्याज को छोड़कर इस गले के नीचे केवल कृष्ण प्रसाद उतरेगा तो हम कंठी माला पहन सकते हैं। ये बॉर्डर के आगे केवल कृष्ण प्रसाद उतरेगा, शाकाहार या अन्य भी खाएंगे लहसुन प्याज के बिना, वो भी कृष्ण को अर्पण करके ही खाएंगे तो ये तुलसी पहन सकते हैं। और तुलसी पहनने के बाद तुलसी माला पे जप कर सकते हैं, और तुलसी माला पे जप करेंगे, 16 माला भगवान को भोग अर्पण करेंगे, केवल प्रसाद खाकर भगवान के नाम का जप करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मामूली चीज़ें अपने जीवन में भगवान हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए, यही हमारे लिए मैसेज है कि हम यात्रा करते हैं आत्मशुद्धि के लिए। तो प्रयास कीजिए, थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा, प्रयास के बिना क्या प्राप्ति होती है, पैसा भी प्राप्त नहीं होता है, शादी भी नहीं कर सकते आप, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, इतना कष्ट है, लेकिन हम लोग करते हैं क्योंकि हमको करना है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। उसी तरह से भगवान की प्राप्ति करने का निश्चय हो गया आपका तो आप ये सारे प्रयास अपने आप करोगे। आप एक बार प्रेरित हो गए कि मुझे भगवान चाहिए इस जीवन में, उनके बिना जीवन बहुत दुखमय है, कष्टमय है, पीड़ामय है, मैं नहीं चाहता कि हर समय पीड़ा में रहूं, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं इसी जीवन में, ये जीवन जिसके लिए दिया गया है उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता हूं, समय बर्बाद नहीं करना चाहता, सोच रहा हूं अगले साल करूंगा, इस साल में चाय छोड़ूंगा, अगले साल कॉफ़ी छोड़ूंगा, उसके 5 साल बाद लहसुन छोड़ूंगा, उसके 10 साल बाद प्याज छोड़ूंगा, ऐसा हमने योजना बनाई है, दशवार्षिक योजना, पंचवार्षिक योजना, लेकिन दशवार्षिक योजना तक जियोगे इसकी गारंटी किसने दी आपको? जो अच्छा करना है वो आज से करना है, आज से नहीं करना है, आपसे करना है। अगर आपको यकीन हो गया कि अच्छा है तो आपको आज से ही करना है, और वो जब समझता है व्यक्ति उसी को बुद्धिमान कहलाते हैं। बाकी सब व्यक्ति जो है मूर्ख रहते हैं, चाहे वो PhD क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि जीवन जो है भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया है, बाकी सब तो बाय द वे साइड बिजनेस है, प्रमुख बिजनेस जो है वो भगवान की प्राप्ति है। ये जिसको समझ में आया उसका जीवन धन्य होना आरंभ हो जाता है, धन्य हुआ नहीं अभी, अभी होना है आगे जाके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।